हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आशिका रात को आराम से सो सके, इसलिए अभिमान उसी के पास में रुका हुआ था। कल रात आकाश के अचानक आ जाने के बाद वैसे भी आशिका काफ़ी परेशान हो गई थी। ऐसे में अभिमान चाहता था कि वो थोड़ी देर आराम कर ले। आशिका की केयर करने के चक्कर में अभिमान खुद पूरी रात नहीं सोया था और काम में लगा हुआ था। सुबह के लगभग 7 बजे के करीब आशिका की नींद टूटी और वो बाहर आई तो अभिमान अपने लैपटॉप में लगा हुआ था। थकान की वजह से उसकी आंखों में हल्की सूजन थी। आशिका की इस तरह परवाह आज तक किसी ने नहीं की थी। हालांकि रिहान उसके दोस्त और भाई की तरह था, लेकिन वो भी उसके पास ज़्यादातर रुक नहीं पाता था। ये लड़का सच में पागल है, मेरे लिए अपनी फैमिली तक के खिलाफ हो गया। लेकिन तुम भी मुझे कब तक इस तरह प्रोटेक्ट कर पाओगे अभिमान? इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन भी नज़र नहीं आ रहा है। क्या मेरी पूरी ज़िंदगी इसी तरह उस इंसान से भागते हुए निकल जाएगी? आशिका ने मन ही मन कहा। एक बार फिर उसके चेहरे पर वही दुख भरे भाव उभर आए थे। उसकी ज़िंदगी कभी आसान नहीं रही थी। पहले तृप्ति को खुद की लाइफ से पूरी तरह निकालने के लिए आशिका ने बहुत मेहनत की थी। आखिरकार जब उसने एक मुकाम हासिल कर लिया तो आकाश उसकी ज़िंदगी में आ गया था। आशिका अपनी उलझन में खड़ी अभिमान की तरफ देख रही थी। इस बीच अभिमान की नज़र उसकी तरफ गई। उसने आशिका के चेहरे पर परेशानी के भाव देखे तो वो उठकर उसके पास गया। तुम उठ गई? अच्छा बताओ, तुम्हें चाय चाहिए या कॉफ़ी? मुझे कुकिंग नहीं आती है, बाहर से कुछ ऑर्डर करूं? अभिमान ने पूछा। उसकी आवाज़ से ही जाहिर हो रहा था कि उसे आशिका की कितनी परवाह है। कुछ नहीं चाहिए, आशिका ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। उसकी तकलीफ़ और उस मायूस आवाज़ में छुपा हुआ दर्द अभिमान अच्छे से समझ सकता था। अब उसे समझ आ रहा था कि डार्क वेब की नंबर 1 हैकर ऐश हमेशा खुद को गुमनामी के अंधेरे में कैद क्यों करके रखती थी। वो चाहती तो सामने आकर अच्छा खासा नेम, फेम और पैसे कमा सकती थी। मैं तो तुम्हें ये दिलासा भी नहीं दे सकता कि सब ठीक हो जाएगा, अभिमान ने नज़रें नीचे करके कहा। आशिका ने हल्की मुस्कुराहट दी और अभिमान के हाथ को सहलाकर कहा, तुम्हें अपने डैड की वजह से एम्बैरस होने की ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो। अपनी तरफ से तो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर तो रहे हो, और सच कहूँ तो आज तक मेरे लिए इतना किसी ने नहीं किया। तुम जो कर रहे हो वो काफ़ी है, तुम्हारे लिए वो काफ़ी होगा, पर सच मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हें थोड़े टाइम के लिए ज़रूर उस इंसान से दूर रख सकता है, पर वो तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, अभिमान ने जवाब दिया। अभिमान आशिका की कुछ ज़्यादा ही परवाह जता रहा था। आशिका ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ठीक है, मेरी वजह से परेशान होना बंद करो। देखो अपनी क्या हालत कर रखी है, पूरी रात नहीं सोए, तुम्हें ऑफिस में काम भी करना है। ऐसा करो, तुम थोड़ी देर सो जाओ, मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर? अभिमान ने भौहें उठाकर पूछा, जिस पर आशिका ने हाँ में सर हिला दिया था। अभिमान वहाँ पर खड़ा आशिका के चेहरे को देख रहा था। तभी आशिका ने उसे मुस्कुराते हुए रूम के अंदर जाने का इशारा किया। उसकी वो छोटी सी मुस्कुराहट काफ़ी दिलकश थी। अचानक अभिमान के परेशान चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट उभर आई थी। उसने सिर हिलाकर कहा, चलो इन सब में एक चीज़ तो अच्छी हुई, तुम कम से कम मुझसे फॉर्मली बात नहीं कर रही हो, वरना तुम्हारे मुँह से मिस्टर राजवंश और आप सुनकर मैं बोर हो गया था। हाँ, मेरा फ्रेंड बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और तुमने वो की भी। ऑनेस्टली तुम मेरे दूसरे फ्रेंड हो जिसे सच में मेरी परवाह है, आशिका ने जवाब दिया। दूसरा? अभिमान उसे घूरते हुए बोला, मतलब मेरे अलावा भी कोई तुम्हारा फ्रेंड है? हाँ, वो मेरा हैकिंग पार्टनर है जो बचपन से मेरे साथ है, ही इज़ जस्ट माई एल्डर ब्रदर, आशिका ने उसे रिहान के बारे में बताया। इससे पहले कि अभिमान रिहान के बारे में और सवाल पूछता, आशिका ने उसे लगभग धकेलते हुए रूम के अंदर कर दिया था। थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर मुझे मत कहना कि मैं तुम्हारी वजह से सो नहीं पाया, आशिका बोली और उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसकी इस हरकत पर अभिमान हल्का सा हंस दिया था। इतनी टेंशन के माहौल में उनके बीच एक छोटा सा लाइट मोमेंट क्रिएट हुआ था। अभिमान बेडरूम के अंदर बेड पर जाकर लेट गया और थोड़ी देर में उसकी आँख भी लग गई थी। आशिका अभिमान के सामने कितना भी रिलैक्स रहने की कोशिश करे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे आकाश की टेंशन खाई जा रही थी। अब तो मेरे पास कोई बहाना भी नहीं बचा है जिससे बचकर मैं तृप्ति और आकाश राजवंश से दूर जा सकूं। पिछली बार मैंने अपने हस्बैंड से तलाक लेने की बात कही थी, कोइंसिडेंटली उसका और अभिमान का नाम एक ही है। आई विश कि अभिमान ही वो इंसान होता तो मैं आकाश राजवंश से आसानी से बच सकती थी, पर अनफॉर्चुनेटली अभिमान तो खुद पहले से शादीशुदा है, आशिका ने सिर पकड़कर कहा। अगर अभिमान ने कभी आशिका के सामने आशी का जिक्र नहीं किया होता तो वो अभिमान से उसके मैरिज सर्टिफिकेट और अपनी शादी के बारे में पूछ सकती थी। अभिमान की शादी आशी से दोबारा होने जा रही थी, तो आशिका के दिमाग में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि अभिमान उसका अननोन हस्बैंड हो सकता है। मुझे जल्द से जल्द अभिमान का काम निपटा देना चाहिए ताकि यहाँ से निकल सकूं। पता नहीं क्यों अब इसे तकलीफ में देखकर मुझे बुरा लगता है। पहले मुझे लगता था कि ये अपनी जिद और गुस्से में अपनी फैमिली को बर्बाद करना चाहता है, लेकिन आकाश राजवंश जैसे इंसान से मिलने के बाद यही लग रहा है कि उसकी फैमिली कैसी होगी। अभिमान का काम बस 2-3 दिन का है, उसके बाद मैं बिना बताए यहाँ से चली जाऊंगी, आशिका ने मन ही मन फैसला कर लिया था। उसके बाद आशिका ब्रेकफास्ट बनाने और बाकी कामों में जुट गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अभिमान को सोए हुए 1 घंटे ही हुए थे कि उसके मोबाइल की रिंग बजी। अभिमान नींद में था, उसने बिना नंबर चेक किए कॉल रिसीव किया तो सामने से आशी की सख्त आवाज आई। अभिमान कहाँ हो तुम? आज शाम हमारी इंगेजमेंट है और तुम कल रात से गायब हो, आउटफिट तक ट्राई करके नहीं देखा। तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी इंगेजमेंट के दिन जोकर लगूं? आशी की आवाज़ सुनकर अभिमान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। उसने उनींदी आवाज में कहा, एक तो वैसे ही सर दर्द कर रहा था, ऊपर से सुबह सुबह तुम्हारी आवाज़ सुनने के बाद पूरा दिन बेकार जाएगा। जो करना है करो, बस मुझसे दूर रहो। तुमसे दूर रहो से क्या मतलब है? आज शाम हमारी इंगेजमेंट है, डोंट टेल मी कि तुम वहां नहीं आने वाले हो। अगर तुमने ऐसा किया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा अभिमान, आशी गुस्से में अभिमान पर चिल्ला रही थी। आशी इस वक्त अपने रूम में बहुत सारी ज्वेलरी के साथ बैठी हुई थी और उन्हें ट्राई कर रही थी। अभिमान से बात करते वक्त उसके फोन का स्पीकर ऑन था। जब काजल उसके पास बात करने के लिए आई तब उसने अभिमान और आशी की बातें सुन ली थी। काजल जल्दी से अंदर आई और कॉल पर बोली, प्लीज अभिमान ऐसा मत करना, बहुत मुश्किल से हमने अपना दिल बड़ा करके तुम्हारी गलतियों को माफ करके तुम्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश की है। अगर तुमने अब और कोई गलती की तो आशु कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और तुम उनके गुस्से को जानते हो। काजल काफी प्यार से बात कर रही थी। अभिमान उनकी आवाज सुनकर उठकर बैठ गया था। उसने कुछ नहीं कहा और कॉल कट कर दिया। अभिमान ने अपना सर पकड़ लिया था। मैं इस लड़की से प्यार नहीं करता और ना ही इसके साथ रहना चाहता हूँ। पहले मुझे इसके नाम से भी नफरत थी, पर किसने सोचा था कि इसके नाम वाली लड़की से ही मुझे प्यार होगा। आई विश कि रचित ने बेवकूफ़ी नहीं की होती तो मैं आशिका से शादी कर लेता और उसे सबसे बचा सकता। जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो मेरी लाइफ में होती। अभिमान भी आशिका की तरह काफी लाचार महसूस कर रहा था। आशी ने उसे दोबारा कॉल किया लेकिन अभिमान ने रिसीव नहीं किया तो आशी का वॉइस मैसेज आया था।
लिसन अभिमान, अगर आज शाम तुम एंगेजमेंट में नहीं आई तो मैं सुसाइड कर लूंगी। सिंघानिया फैमिली की एक बेटी की जान तुम्हारी वजह से गई है और दूसरी की भी तुम्हारी वजह से जाएगी। उसके बाद डैड तुम्हारे साथ क्या करेंगे वो तुम सोच लेना। आशी उसे धमकी दे रही थी। अभिमान ने अपनी मुट्ठियों को कस के बंद कर लिया। वो जल्दी से उठा और उसने एक झटके में कमरे का दरवाज़ा खोला। अभिमान को उठावा देखकर आशिका उसके पास आते हुए बोली, अरे तुम इतना जल्दी उठ गए, थोड़ी देर और रेस्ट कर लेते। मैं ठीक हूँ, मुझे जाना होगा। मैं फ्लोर में इमरजेंसी मोड सेट करके जा रहा हूँ, जिसके बाद इस फ्लोर पर आने के लिए लिफ्ट को मैं ही अनलॉक कर सकता हूँ। घबराना मत और मेरा इंतज़ार करना, अभिमान ने आशिका के गाल पर हाथ रखकर कहा। इतनी मुसीबत में भी उसे खुद के बजाय आशिका की चिंता थी। आशिका उससे अभिमान के अजीब बर्ताव का कारण पूछना चाहती थी, लेकिन अभिमान जल्दबाजी में वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल गया था। वो कहाँ जा रहा था उसे खुद भी एहसास नहीं था, बस एक बात साफ थी कि उसे कुछ भी करके यहाँ से दूर जाना था। वहीं दूसरी तरफ इशिका हॉस्पिटल पहुँच गई थी। उसने सबसे पहले अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया और रिपोर्ट आने का इंतज़ार कर रही थी। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर ने उसे अपने केबिन में बुलवाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस सिंघानिया, आप 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। क्या आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं जो आपको पता नहीं चला? इतने टाइम में आपको खुद ही टेस्ट कर लेना चाहिए था, डॉक्टर ने इशिका को रिपोर्ट्स देते हुए कहा। इशिका हैरानी से डॉक्टर की तरफ देख रही थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। कुछ पल के लिए इशिका बिल्कुल सुन हो गई थी, फिर उसने जल्दी जल्दी रिपोर्ट्स पलटकर देखनी शुरू कर दी थी। अच्छा, अगर आपने पहली बार टेस्ट करवाया है तो मैं आपको कुछ मेडिसिन रेकमेंड करना चाहूंगी जो आपके लिए सही रहेगी, डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा और कुछ दवाइयां लिखकर इशिका को दे दी थी। इशिका ने जब उन दवाइयों के नाम देखे तो एक बार फिर से उसे झटका सा लगा। वे दवाइयां तो वो पहले से ही ले रही थी। थैंक यू डॉक्टर, इशिका ने इतना ही कहा और जल्दी से बाहर आ गई थी। मुझे पहले से ही प्रेगनेंसी की दवाई दी जा रही है और मुझे पता भी नहीं, मेरा याद क्यों नहीं आ रहा है कि मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। मेरा किसी के साथ किसी तरह का कोई इंटीमेट रिलेशन नहीं है, फिर बच्चा कहाँ से आ सकता है? मिसेस सिंघानिया ने मुझे इन दवाइयों को लेकर झूठ बोला था। मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने मुझे टाल दिया। इसका मतलब वो पहले से जानती थीं। आप इतनी अच्छी थी मिसेस सिंघानिया, फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? इशिका ने परेशान स्वर में कहा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो प्रेग्नेंट है और राधिका उसे झूठ क्यों बोल रही है। इशिका ने आंखें बंद की और सोचने की कोशिश करने लगी, पर उसे दूर दूर तक कुछ याद नहीं आ रहा था। उसकी पुरानी यादें इस कदर धुंधली हो चुकी थीं कि जब भी वो कुछ सोचने की कोशिश करती उसके सर में दर्द होने लगता था। अब आप ही मिसेस सिंघानिया हैं जो मुझे सच बता सकती हैं, आखिर चल क्या रहा है मेरी लाइफ में? और अचानक से आदर्श सिंघानिया, मालविका और आयशा कहाँ गायब हो गए? जब भी उनके बारे में पूछती हूँ आप बहाने बनाने लगते हैं। एक अनजान इंसान आपके घर पर रह रहा है, इशिका ने मन ही मन कहा। उसके शक की सुई बार बार राधिका पर ही घूम रही थी। इशिका हॉस्पिटल से बाहर निकली तभी उसके पास दिशांक का कॉल आया। इशिका ने कॉल रिसीव किया और गहरी सांस लेकर कहा, पिछले 2 दिनों से कहाँ गायब हो? कॉल कर रही हूँ और जवाब नहीं दे रहे। आपने ही तो कहा था कि पुराना सारा डेटा कलेक्ट करना है। इमरजेंसी मीटिंग की वजह से बाहर जाना पड़ गया था। आप तो जानती हैं ना कि मैं मीटिंग में आउट ऑफ स्टेशन होता हूँ तो कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ। दिशांक ने बहाना बनाया, जबकि इस वक्त वो उनकी ही फैक्ट्री में मौजूद था। इशिका को शक ना हो इसलिए अभिमन्यु ने ही उसे इशिका की याददाश्त जाने से पहले जो भी काम चल रहा था उस हिसाब से फाइल सेट करने के लिए कहा था। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, इशिका ने इतना ही कहा और फिर कॉल कट कर दिया था। इशिका दिशांक के बिना सिंघानिया मेंशन नहीं जाना चाहती थी। उसे यही लग रहा था कि वो अगर वहां गई तो फिर से राधिका उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर झूठ बोलेगी। थोड़ी देर रिलैक्स करने और अपने सवालों के जवाब पाने के लिए इशिका को अपने मन को शांत करने की जरूरत थी। वो इस वक्त पार्क की एक बेंच पर मायूस होकर बैठी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा ना कि क्या करना चाहिए। यही होता है जब हमारी जिंदगी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इशिका को एक अनजान आवाज सुनाई दी, लेकिन उसकी बातों से साफ था कि वो उसे जानता है। इशिका ने हैरानी से अपने पास में बेंच पर बैठे शख्स की तरफ देखा, जो परेशान हालत में भी होठों पर हल्की मुस्कुराहट लिए बैठा था। इशिका के लिए वो इंसान नया था, पर उसकी बातें बता रही थीं कि वो उसे अच्छे से जानता है।